अमर सीसीटीवी फुटेज देख चुका था। जानवी को उसने ड्रॉप किया था। उसके बाद जानवी ने अपने फोन में कुछ किया और उसके बाद एक एसयूवी आई जिसमें बैठकर जानवी वहां से चली गई। असल में पार्लर ओनर सही बोल रही थी, जानवी पार्लर के अंदर तो गई नहीं। अमर के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी और उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उसने पार्लर की ओनर से माफ़ी मांगी और तुरंत ही तेज़ कदमों से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और जल्दी से दीक्षांत को कॉल किया। दीक्षांत, जो खुद परेशानी में रावत मेंशन के हॉल में घूम रहा था, उसने अमर का फ़ोन देखकर जल्दी से पिकअप करते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला भाभी जान का?
नहीं यार, मुझे नहीं मिल रही है। तू एक काम कर, पुलिस स्टेशन से बोल सारे एरिया में जहाँ जहाँ ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी लगा रखी है उनकी फुटेज तुझे भेजे और तू उसको एनालाइज कर। उसके साथ ही एक बार के लिए पूरे शहर को बंद करवा दे, मुझे अपनी जान को ढूंढना है।
अमर की आवाज़ सुनकर दीक्षांत को लग रहा था जैसे वो किसी भी पल रो देगा, इसलिए दीक्षांत ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तू पहले खुद को शांत कर, हम करते हैं कुछ। अगर ऐसे घबराएगा तो उसे ढूंढेगा कैसे? मैं और समर्थ करते हैं ट्रैफिक पुलिस से बात, और तुझे जो जो सबूत अब तक मिले हैं हमें बता दे, उस हिसाब से हम पुलिस से हेल्प ले सकते हैं। अमर ने एसयूवी के नंबर्स ले लिए थे। उसने वो नंबर दीक्षांत को फॉरवर्ड किया और फिर कहा, जल्दी से मुझे इस गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड भेजो। अमर की गाड़ी पागलों की तरह पूरे शहर में दौड़ रही थी और अब तक तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ चुकी थी कि अमर रावत की वाइफ गायब हो चुकी है। पर अमर की वाइफ को आज तक किसी ने देखा नहीं था, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता था कि आखिर अमर ढूंढ किसे रहा है। पल भर में पूरा मुंबई शहर शांत पड़ चुका था, बस अमर की गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। आखिरकार अमर को एसयूवी का पूरा ट्रैक पता चल चुका था, लेकिन उसका चेहरा हैरानी से भर गया जब उसने गाड़ी का आखिरी डेस्टिनेशन देखा, क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि अद्वैत की हवेली थी। वहीं त्रिशा अब समर्थ के कमरे में थी और वो बालकनी में खड़ी होकर जानवी से बात कर रही थी। जानवी ने जैसे ही देखा कि त्रिशा का कॉल आया है, वो जल्दी से फ़ोन उठाते हुए बोली, दी क्या आप घर पहुंच गई हैं? सामने से त्रिशा ने जवाब दिया तो जानवी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं अद्वैत अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा। अब आप अमर को सब सच सच बता दीजिए, फिर वो मुझे लेने यहाँ आ जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना है, बहुत डर लग रहा है मुझे यहाँ। जानवी को अलग ही चैन मिल रहा था, क्योंकि उसे अपने अमर पर पूरा पूरा भरोसा था, कैसे भी करके वो उसे हर परेशानी से निकाल लेगा। उसे चिंता बस त्रिशा की थी, जो अब दूर हो गई। लेकिन सामने से त्रिशा की बात सुनकर वो घबरा गई। त्रिशा ने अपनी आवाज़ को उदास करते हुए कहा, जानवी मुझे तुम्हें कुछ बताना था, अद्वैत ने हमारे साथ धोखा किया है। तुम सही बोलती हो, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मंदबुद्धि हूँ। मुझे नहीं पता था अद्वैत मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे लगा था वो तुम्हें यहाँ बुलाएगा और उसके बाद मैं अमर के साथ रहूँगी, लेकिन उसने तो अलग ही खेल रच दिया है। उसने मेरी बॉडी में एक चिप लगाई है जिसके ज़रिए वो मेरी पल पल की खबर रखता है। साथ में उसके पास इस चिप का रिमोट है जिसके ज़रिए वो कभी भी मेरी बॉडी को ब्लास्ट कर सकता है, और इसके बदले में वो चाहता है कि तुम उसकी बातें मानो। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी में डाल दूंगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं तो कहूंगी अगर तुम्हें अद्वैत ज़्यादा परेशान करे तो तुम मुझे ख़त्म करने को बोल सकती हो। मैंने इतने पाप कर दिए हैं तो अब मेरा मरना तय है। शायद मेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मैंने अपनी छोटी बहन को परेशान करके दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया। इतना बोलने के साथ ही त्रिशा बुरी तरह रोने लगी, जिसे सुनकर जानवी का भी गला भर आया। उसने हकलाती आवाज़ में कहा, दी आप ये सब क्या बोल रही हैं? क्या सच में ऐसा हुआ है? अगर मेरी वजह से ये सब हुआ है तो आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरा एक कदम ऐसा कुछ कर देगा। त्रिशा के होठों पर डेविल स्माइल थी, तो वही उसकी आवाज़ में वही उदासी बरकरार थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तू क्यों रो रही है? तूने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी गलत मैंने किया है, तो गलत होना भी सिर्फ मेरे साथ चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं। बाई चांस अगर वो तुम्हें धमकी दे तो बोल देना कि मुझे मार डाले। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की। जानवी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे किसी भी पल फ़ोन छूट कर गिर जाएगा। उसकी कनपट्टी से बहता पसीना, सूखते होंठ और आँखों में आई नमी बता रही थी कि फ़िलहाल वो क्या इमोशन फील कर रही है। फिर भी उसने अपना गला सही करते हुए कहा, दी आप परेशान मत होइए, मैं जल्द से जल्द वो रिमोट उससे ले लूँगी और उसके बाद हम सेफ हो जाएंगे। तब तक मैं उसके सारे ऑर्डर फॉलो करूँगी और आपको कुछ नहीं होने दूँगी। त्रिशा तो जैसे जानवी से बस यही सुनना चाहती थी। उसने लगभग रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। अब मैं फ़ोन रखती हूँ वरना कोई हमारी बातें सुन लेगा, क्योंकि अद्वैत ने मुझसे कहा है कि अगर बाई चांस भी रावत मेंशन में ये खबर फैली तो वो अगले ही सेकेंड मुझे जान से मार देगा। जानवी ने बस धीरे से हाँ कहा और त्रिशा ने कॉल कट कर दिया। अगले ही पल जानवी घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाते हुए रो पड़ी। उसे बहुत बुरा लग रहा था अपनी किस्मत पर। पता नहीं अद्वैत उससे अब क्या करवाने वाला है, यही सोच सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। जानवी को रोते हुए बस 5 मिनट ही हुए होंगे कि वहाँ तेज़ कदमों से चलता हुआ अद्वैत आ गया। उसे देखकर जानवी सहम गई।